राजवीर जी आकांक्षा और जानवी के साथ राजपुरोहित जी के सामने बैठे थे। राजपुरोहित जी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे। ये इतनी देर से चुपचाप आंखें बंद करके बैठे हैं, कहीं इन्हें नींद तो नहीं आ गई? जानवी ने धीरे से कहा। चुप कर, कहीं इन्होंने सुन लिया तो? जब से उन्होंने मुझे देखा है एक शब्द भी नहीं कहा, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? आकांक्षा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले राजवीर जी ने उनकी तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, तुम लड़कियां एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकती क्या? जब देखो पटर पटर करती रहती हो। राजवीर जी के डांटते ही आकांक्षा और जानवी चुप हो गईं। राजपुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा काफी शांत था। उन्होंने शांत और गंभीर आवाज में कहा, श्रीमन डांटिए मत, बच्चियां हैं दोनों, इस उम्र में उत्सुकता होना स्वाभाविक है ला, ऊपर से इन दोनों के साथ तो इतना कुछ हो रहा है। राजपुरोहित जी की बात सुनकर आकांक्षा और जानवी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगीं। इस तरह हैरानी से मत देखो, इनसे कुछ नहीं छुपा है, राजवीर जी ने कहा। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आकांक्षा से कुछ पूछना चाहता हूँ। जानवी यहाँ चाहे तो रुक सकती है, लेकिन आपको बाहर जाना होगा, राजपुरोहित जी ने कहा। राजपुरोहित जी अच्छे से जानते थे कि आकांक्षा उनके साथ वाले सारी बातें खुलकर नहीं बता पाएंगी, इसीलिए उन्होंने उन्हें बाहर जाने का बोल दिया। जी कहकर राजवीर जी वहां से बाहर चले गए। आकांक्षा, अब तक तो तुम कुदरत से मिली शक्तियों से अनभिज्ञ नहीं रही होगी। तुम्हें पता होगा कि कुदरत ने तुम्हें किस काम के लिए चुना था। क्या तुमने अपना काम बखूबी पूरा किया? राजवीर जी के बाहर जाते ही राजपुरोहित जी ने तुरंत पूछा। उनकी बात सुनकर आकांक्षा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने जानवी की तरफ देखा जो कि बिल्कुल शांत थी। फिर उसने राजपुरोहित जी की तरफ देखकर जवाब दिया, मैंने जंगल की बुराई को खत्म कर दिया। अच्छा किया, लेकिन बच्चे, जिस चीज को स्वयं शैतान का आशीर्वाद हो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। भले ही उसके अंदर बुराई विकसित ना हुई हो, लेकिन उसकी जड़ बुराई ही होती है, राजपुरोहित जी ने गंभीर स्वर में कहा। आकांक्षा और जानवी उनके कहने का मतलब बखूबी समझ रही थीं, लेकिन वो राजपुरोहित जी से रिवांश का सच छुपा रही थीं। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। दादू ने कहा था कि आपने उन्हें बताया कि मुझे किसी खास मकसद के लिए शक्तियां मिली हैं। मेरा मकसद पूरा हो गया है तो क्या मेरी शक्तियां चली गई हैं? आकांक्षा ने पूछा। राजपुरोहित जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्या सच में तुम्हें ये लगता है? तुमने देखा कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं या नहीं? लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि मेरे पास शक्तियां हैं या नहीं? पहले तो मैं किसी का हाथ छूती थी तो मुझे उसके साथ जुड़ी हुई सभी घटनाएं दिखाई देने लगती थीं, आकांक्षा ने जवाब दिया। तो अब एक बार फिर कोशिश करके देख लो। राजपुरोहित जी के कहते ही आकांक्षा ने जानवी के हाथ को पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। आकांक्षा ने काफी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें खोलकर कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राजपुरोहित जी, इसका मतलब मेरा मकसद पूरा हो गया है, मेरे पास अब मेरी शक्तियां नहीं रही हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं हैं तो हो सकता है कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया होगा। अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तो माता रानी का आशीर्वाद लो और उनसे प्रार्थना करो कि आगे भी सब अच्छा ही हो, राजपुरोहित जी ने आकांक्षा के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्हें प्रणाम करके आकांक्षा और जानवी वहां से जाने लगीं। अपनी सहेली के साथ रहना, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक सच्चा मित्र वही होता है जो कि अपने दोस्त के अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ निभाए। राजपुरोहित जी के शब्दों ने जानवी के कदम वहीं रोक दिए। उसने राजपुरोहित जी की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी आंखें बंद थीं और वो फिर से ध्यान में मग्न थे। आते वक्त राजपुरोहित जी ने मुझसे जो कहा, क्या तुमने वो सुना? बाहर आते ही जानवी ने आकांक्षा से पूछा, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था, पूरे टाइम मैं तेरे साथ ही तो थी। तुझे क्या लगता है कि हमें राजपुरोहित जी को रिवांश का सच बता देना चाहिए था? आकांक्षा अभी भी उलझन में थी कि उसने सच छुपाकर सही किया या गलत। तेरे पास तेरी शक्तियां नहीं है और राजपुरोहित जी ने भी कह दिया ना कि तेरा मकसद पूरा हो गया। उनके हिसाब से तुम्हारा जन्म धरती पर फैली बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था और इसी मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ शक्तियां मिली थीं। तुमने जंगल के सभी बुरे वैम्पायर्स को मार डाला। तूने रिवांश को नहीं मारा क्योंकि वो अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं होता तो तेरे पास अभी भी तेरी शक्तियां होती और तेरा मकसद अधूरा होता, जानवी ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जिस चीज को स्वयं शैतान ने बनाया है उसकी जड़ बुराई ही होगी। रिवांश को भी शैतान ने ही पिशाच बनाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, आकांक्षा ने परेशान होकर कहा। हम कल तक यहीं पर हैं, उनसे पूछ लेंगे ना कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है हमें उन्हें रिवांश के बारे में भी बता देना चाहिए। ऊपर से तो त्रिशान भी कह रहा था कुछ बुरा होने वाला है। पिछली बार भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, हो सकता है इस बार भी वो हमारे काम आए। जानवी और आकांक्षा अपनी उलझन में खोई थी कि तभी राजवीर जी वहां आ गए। उनके आते ही वो दोनों चुप हो गईं। राजपुरोहित जी से बात हो गई, अक्षु तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनसे कुछ मत छुपाना, राजवीर जी ने उनके पास आकर कहा। मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही दादू, और वैसे भी उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही कहाँ है, उन्हें तो सब पहले से पता होता है, आकांक्षा ने बुझे स्वर में जवाब दिया। क्या हुआ,
तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आकांक्षा को परेशान देखकर राजवीर जी को चिंता होने लगी। कुछ नहीं दादू, वो बस इतने लंबे सफर से आए हैं ना, तो थक गए हैं। मुझे भी बहुत थकान हो रही है। क्या हमें पिछली बार की तरह कोई रूम मिल सकता है जहाँ हम आराम कर सके? जानवी ने बात को टालने के लिए कहा। मैंने कमरा अरेंज कर लिया है, तुम दोनों आ जाओ। राजवीर जी उन दोनों को लेकर वहाँ की धर्मशाला में चले गए। बटाबट आकांक्षा और जानवी के राजपुरोहित जी के कक्ष से निकलते ही त्रिशान ने उनके कमरे में दस्तक दी। उसके आते ही राजपुरोहित जी ने बंद आंखों से ही कहा, कुटिया का दरवाजा बंद कर दो त्रिशान। जी दादू। त्रिशान ने दरवाजा बंद किया और उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, तुमने उसे पूर्ण किया? उन्हें तो मेरी बात पर विश्वास भी नहीं है। मैंने रिवांश को विश्वास दिलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो है कि मेरी बात समझने तक को तैयार नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऊपर से रिवांश को तो इतना बड़ा धोखा मिला है, उसके बाद इंसान जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन आपने मुझे मेरी पहचान छुपाने को क्यों कहा? अगर मैं उन्हें सच बता देता तो वो मेरी बात पर जल्दी विश्वास कर लेते। मुझे उनसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, त्रिशान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन तुमने उनसे सच कहाँ छुपाया? तुम एक मायावी भेड़िए हो। तुमने उन्हें ये बता दिया था? दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये भी तुमने उन्हें बता दिया? तुम्हें ये बात अपने घर के बुजुर्ग से पता चली, ये भी बता दिया? राजपुरोहित जी बहुत शांत स्वर में जवाब दे रहे थे। लेकिन मेरे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आप हो, ये कहाँ बताया? माना कि आप मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो, लेकिन शक्तियाँ तो आपके पास भी है ना? आपके पास आपके तप की शक्ति है, तो मेरे पास मेरे पूर्वजों की दी हुई शक्तियाँ। ये बात अलग है कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, तो मेरे अंदर बुराई को नहीं पनपने दिया, त्रिशान ने कहा। जैसे मैंने तुम्हें अपनी शक्तियाँ काबू करना सिखाया, वैसे मुझे आकांक्षा की शक्तियों को जागृत करना होगा। उसकी शक्तियाँ जागृत होने पर ही वो उस काम को कर पाएगी जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है और जिसके लिए उसे ये शक्तियाँ मिली हैं, राजपुरोहित जी ने गंभीर होकर कहा।
दादू, मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा कभी उसे मार पाएगी। अगर मारना होता तो वो उसी दिन ही उसे मार देती जिस दिन उसने बाकी के पिशाचों को खत्म किया था। दादू, वो उसे प्यार बोलते हुए त्रिशान रुक गया और उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन राजपुरोहित जी से कहाँ कुछ छुपा था। उसकी अधूरी बातों का मतलब वो अच्छे से समझ चुके थे।